अकाल से छोटे दो बच्चे, बस इसी का नाम फैमिली है। वास्तव में हमारे यहाँ तो फैमिली वो होती थी जिसमें कि बहन भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, और जितने संबंध हो सकते थे वो सब थे, और जितने संबंध होते हैं उतनी मृदुता होती संबंधों की वजह से। और अब आज वो सब खत्म होती चली जा रही, अब तो दो में ही आदमी को ऐसा लगने लगता है कि जैसे मेरे ऊपर बोझ बढ़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमने पता नहीं कहाँ से एडॉप्ट कर लिया है, अपने हाथ से हमने अपना अहित कर लिया है। अगर देखा जाए तो जो इसमें लिखा है इन्होंने कि उच्च कुल में उसको जन्म देना था जिससे कि धर्म की परंपरा चलती, लेकिन हमने उसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि हमारे सुख के साधन कम हो जाते ना, अम्यूजमेंट जितनी कम फैमिली होगी उतने ठाट से जिएंगे ऐसा लगता है, ज्यादा लोगों का तो बोझ हो जाएगा। ध्यान रखना, एक यहीं पर मैं अब आपको पता लग जाएगा इसलिए नहीं कह रहा हूँ, एक फैमिली थी उसमें तीन बेटियां हो गईं, मैंने वहां चतुर्मास भी करा। तीन बेटियां होने के बाद और चौथी बेटी होने को है, और उन्होंने बहुत कोशिश करी उसको अबॉर्शन करवाने की। तीन बार ऑपरेशन थिएटर से माँ बेहोशी करने की दवाई सुंघा देने के बाद, एनास्थीसिया देने के बाद भी सब तोड़ करके वापस आ गई। दो बार तो ऐसे ही लौट आई, तीसरी बार तो एनास्थीसिया के बाद भी लौट के आ गई, जबकि सबका मन था कि जब डायग्नोज हो गया है कि बेटी ही आने वाली चौथी भी, तो अबॉर्शन करवा दे। और उस लेकिन वो सरवाइव कर गई। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस दिन वो बेटी, मैंने उनको कहा कि आप नहीं पालेंगे चौथी बेटी, वो अपने आप पल जाएगी, और जिस दिन वो बेटी पैदा हुई इनके लिए उस दिन अपने व्यापार में नेट 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा सुनो, आज की तारीख में उसके नाम से FD कर दो, 20 साल की शादी लायक होगी, तब तक पर्याप्त पैसे हो जाएंगे शादी के लिए। आते ही साथ 1,00,000 रुपए का नेट बेनिफिट हुआ। ये मेरे आंखों देखी घटना है। इसलिए अपन लोग को लगता है जैसे कि हम पालते पोसते ना हो, जैसे कि हमारे जिम्मे सारी सृष्टि चल रही हो। अरे भाई, अपना पुण्य पाप लेकर के सब आते हैं, इसलिए कभी भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए कि हम आने वाली संतति को रोकने का उपाय करें या कि उसे किल करने का पैदा होने से पहले उपाय करें। पता नहीं फॉरवर्ड होने के चक्कर में हम कहाँ जाएंगे, भगवान जाने। मैंने तो अपनी बात कह दी, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से सहमत हों। मैं 2-3 मामलों में बहुत बैकवर्ड माना जाता हूँ। लोग वैसे तो मुझे सोचते हैं कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस मामले में बहुत बुद्धू हूँ। 2 चीज़ों में कि विवाह करना, अपने आचार विचार और अपने धर्म में, अपनी परंपरा आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरी चीज़ कभी भी इस प्रक्रिया को अप्लाई नहीं करना अपने ऊपर कि आने वाली संतान, या फिर आजीवन ब्रह्मचर्य ले लो जिससे कि संतान ही उत्पन्न ना हो। अगर आपने संतान उत्पत्ति का मार्ग रोक दिया है, इसके मायने आपने नपुंसक वेद का बंध, तो अगली बार आपको फिर संतान उत्पत्ति में बहुत मुश्किल होगी, होगी ही नहीं। लेकिन देखने में नहीं आता ना, इसलिए विश्वास नहीं होता, मत करो विश्वास। लेकिन जब जीवन में घटित होगा तब सबको मालूम पड़ेगा कि हाँ, इसलिए तो लिखा है कि पंचम काल में अधिकांश जीव नरक से आते हैं, नरक जाते हैं, नपुंसक वेद का उदय वहीं पर होता है। बहुत सावधानी की मैं बहुत कम कहता हूँ, लेकिन आज आपने प्रश्न कर दिया, क्योंकि दुख भी लगने लगता है कि आपसे ऐसी बात कह रहा हूँ, जबकि सब लोग इतने अकस्टम टू हो गए हैं, इस चीज़ को इतना बढ़िया मान रहे हैं, और बड़े छाट से कहते हैं कि हाँ बस एक गुड़िया है, एक गुड़िया है और एक भैया है, बस बहुत खुशी से बताते हैं कि ऐसे हम। तो ये खुशी कितने दिन रहने वाली है भगवान जाने। सबने करा होगा मेरे ख्याल से, 90% लोग यही इसी प्रक्रिया को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन इसका समर्थन नहीं करता। मुझे इस गद्दी पे बैठ करके जैन दर्शन की बात कहनी है। बाकी आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आपकी अपनी च्वाइस है भाई। मैं कौन होता हूँ कि आपकी उस च्वाइस में बाधक बनूं, पर है तो जैसा वैसा ही कहूँगा। ये जो है तो एक ही राइटिंग के इतने सारे क्वेश्चंस और पेपर्स भी एक जैसे। अब बताइए, हैं, पहले जो है ना छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस। निवेदन है कृपया ये बताने की कृपा करें कि सुबह जय जिनेंद्र बोलना चाहिए सो बोलते हैं, सुबह नित्य नियम करके मंदिर जाना चाहिए सो भी जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्राणी ये कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर में भी सर्वप्रथम झाड़ू लगाकर घर में पानी से धोकर ही मंदिर जाना, घर को पानी से धोकर ही मंदिर जाना चाहिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सीधे ही मंदिर उठकर चले जाना चाहिए क्योंकि सुबह झाड़ू धोने पहुँचने में जीव हिंसा बहुत होती, क्या उचित है? अपने यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि संसार शुरू करने से पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए, बस इतना ही लिखा हुआ, इससे पहले कि मैं संसार में प्रवेश करूं, संसार के कार्यों को शुरू करूं, इसके पहले मैं जरा देख तो लूं कि मेरा स्वभाव क्या है, फिर उसके बाद जरा भगवान के पास जाकर के उनके दर्शन करके वापस लौटते समय पीठ पर उनके हाथ तो रखवा लूं कि जा रहा हूं संसार में, भटक ना जाऊं, वापस आना यहीं। पीठ नहीं देते भगवान को, निकलते समय कहते हैं कि जरा पीठ पर थपथपा तो दो, जा रहा हूं अब सामने संसार है, जब आपके पास आया था तो आप सामने थे, पीठ संसार की तरफ थी, अब आपकी तरफ पीठ नहीं कर रहा हूं पर संसार की तरफ मुख है, और पीठ तो इसलिए आपकी तरफ है कि आप जरा संभाले रहना इस संसार में। हाँ, इस संसार में जा रहा हूं, जूझूंगा मैं वहां पर, सिवाय पाप के और कुछ नहीं है, लेकिन आपको भूल नहीं जाऊं, यहां से शुरू होती है अगर वास्तव में देखा जाए तो दिनचर्या, और बाकी तो सिर्फ मान्यताएं हैं, सच्चाई और मान्यताओं में बहुत अंतर है, कई मान्यताएं ऐसी बन जाती हैं कि वो आपने लिखा ही है कि ऐसा ऐसा करते हैं, पर मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ, इसलिए वास्तविकता तो आचार्यों ने यही लिखी है कि संसार शुरू करने से पहले और अपना स्नान करके, स्नान और ध्यान, फिर उसके बाद में बाकी काम, स्नान ध्यान कहते ना कि स्नान करके मंदिर के दर्शन फिर संसार के सारे काम शुरू करें, पर अब आज के समय में तो ये सब बातें ही बातें हैं, कौन करता है, बैटरी चाहिए सबसे पहले है कि नहीं, वहीं पर पेपर के साथ लेटे लेटे टेलीविजन सामने है खुला हुआ और पेपर हाथ में है और चाय का प्याला, भगवान अगवान, फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे दिन भर में, कहाँ फुर्सत है भगवान, आपको फुर्सत है भगवान, हमें कहाँ फुर्सत है नहीं भैया ऐसा नहीं है, हैं अपने को इतना ध्यान रखना, क्या भाग्य का फल निश्चित है, यदि है तो फिर मंत्र तंत्र और यंत्र की क्या आवश्यकता है, अगर भाग्य निश्चित नहीं है तो फिर भविष्य के बारे में एकदम सटीक भविष्यवाणी क्यों कैसे कर पाते हैं, आपने दोनों चीजों को जोड़ दिया, पहले भाग्य और पुरुषार्थ समझ लें, फिर बाद में जो बाह्य निमित्त हैं उनमें मंत्र तंत्र ज्योतिष इत्यादि ये सब चीजें निमित्त हैं, अकेले लोगों का टाइम हो गया क्या जाने वालों का, लेकिन आपको हमारे पास से 6:30 के पहले निकल जाना है, फिर आप चाहे जहाँ रहो ये बता दिए, 5 मिनट पहले आप हमारे पास से निकल, जब तक हम प्रश्न पूरे कर दें, अच्छा ठीक, ये सारे प्रश्न जो है रह जाएंगे भैया, इतने सारे प्रश्न रह जाएंगे, मैं तो बहुत थोड़े से प्रश्न कर पाया, एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि भाग बड़ा कि पुरुषार्थ, और भाग्य किसे कहते हैं और पुरुषार्थ किसे कहते हैं, वर्तमान में किए जाने वाले कर्म को पुरुषार्थ कहते हैं और जो कर्म पहले किए जा चुके हैं वो सब भाग्य कहलाते हैं, किसी ने हमारे लिए भाग माथे पे लिखा हो ऐसी धारणा गलत है, अपना भाग स्वयं हम निर्मित करते हैं, एक क्षण पहले जो कर्म करते हैं वो भाग्य की तरह हमारे साथ अटैच हो जाता है, अगले क्षण जो कर्म करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है, और दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये निर्णय इतना आसान नहीं है, क्या हुआ एक बार भाग्यवादी और पुरुषार्थवादी दो लोग थे, ये तय करना था कि कौन बड़ा, भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ, मिलता कैसे, भाग्य से मिलता कि पुरुषार्थ से, तो दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और कहा कि इस अंधेरे कमरे में कहीं पर एक लड्डू रखा हुआ है, जो पुरुषार्थवादी था उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, ढूंढना पड़ेगा, भाग्यवादी ने कहा कि सो आराम से मिलना होगा तो मिलेगा, वो सो गया और दूसरे ने टटोल करके और ढूंढना शुरू किया, और घंटे भर की मेहनत के बाद उसके हाथ में लड्डू आ गया। जोर से उसने कहा कि मैंने पुरुषार्थ से लड्डू पा लिया और दरवाजा खोल करके बाहर निकल रहा था, उतने भी उसको लगा कि है तो आखिर मेरे ही मित्र, है तो आखिर मेरे ही। बेचारा सो रहा है, इसको कैसे मिलेगा। जगाया उसको, सुन मैंने पा लिया है लड्डू, लेकिन आधा तू भी ले ले। वो बाहर आता, देखा देखा मेरे भाग्य में आधा लड्डू था, मुझे भी प्राप्त। अब बताइएगा कि कौन जीता, भाग्य वाला जीता कि पुरुषार्थ वाला जीता। कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ये ध्यान रखें, इतना अवश्य जोड़ लें कि भाग्य भी हमारा है और हम अपने भाग्य को अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। अच्छा, आचार्य श्री को बारंबार नमस्तु, सब महाराजों को भी अच्छे दर्शन करके आओ। अब आप लोगों का भाग ये लोग हैं, अब ये इनके पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी करेंगे और भाग भी। अच्छा, इसी हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। आप अपनी, हाँ निकालो बेटे इसमें से, हम दे देंगे। अरे वाह, तो अपन बात कर रहे थे कि भाग और पुरुषार्थ। भाग और पुरुषार्थ जो है वो दोनों में से, दोनों कभी कभी भाग प्रबल हो जाता है तो कितने भी पुरुषार्थ करते हैं कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, और कई बार थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पर भी भाग्य फेवर में होता है। एक उदाहरण और है कि किसी के पास अपन ने अपने 100 रुपए रख दिए थे कि बाद में ले लेंगे, और एक दिन ऐसा आया कि अपन ने उसका 100 रुपए का काम और कर दिया, और जब लेने पहुंचे तो उसने कहा 200 लेके जाओ। अरे मैंने तो तुम्हारा 100 का ही काम किया, 100 का तो किया, पर पहले तुम्हारे 100 तो मेरे पास पहले से रखे थे, वो भी ले लो। अब हम चकित कि काम तो 100 का किया और मिल गए 200, और किसी से अपन ने पहले 100 रुपए उधार लिए थे और फिर बाद में उसका 100 रुपए का काम करा। जब उससे मांगने गए तो उसने कहा अभी तो पुराना ही चुकता हुआ है, अभी हिसाब बराबर हुआ, अभी कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखते हैं कि इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया, और उसने तो जरा सा पुरुषार्थ किया और बहुत मिल गया। भैया इस तरह भाग्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमेशा इंटरकनेक्ट है। जैसे हम एक कदम आगे रखते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है, अगला कदम उसी को फॉलो करता है, वही हमारा भाग्य। या कि दूसरे ढंग से कह दें कि जो हम करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ, और जो लोग हमारे बारे में विचार करते हैं वो हमारा भाग्य। हमने आपके साथ अच्छा किया, आपने रिटर्न में हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो ये बुरा है हमारा भाग्य, लेकिन हमारा कर्म तो अच्छा, कर्म तो हमने अच्छा ही किया, लेकिन हमें रिटर्न में बुरा। ऐसे ये जुड़ी हुई चीज है, इसलिए इसको ऐसा माने, और अपने भाग को हम अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। जैन दर्शन यही सिखाता है कि कर्म का उदय आने पर शांत रह करके हम अपने उन कर्मों को नष्ट कर सकते हैं आसानी से। यही तो सारी फिलॉसफी है, नहीं तो फिर क्या, फिर तो हम भाग्य के भरोसे बैठ जाए तो फिर तो संसार अनंत हो जाएगा। हमारा है ही वैसे भी, हम तो संसार से पार होने के लिए अपने पुरुषार्थ को महत्व देने वाले लोग हैं, लेकिन पुरुषार्थवादी नहीं है। हाँ, हम निराग्रही हैं, पुरुषार्थ और भाग दोनों का कॉम्बिनेशन मान के चलते हैं, ये ध्यान में। न दैववादी हैं न पुरुषार्थवादी हैं, दोनों को। फिर आचार्य भगवंत के चरणों में बैठे समंतभद्र स्वामी के, वो पहले एक कारिका लिखते हैं पुरुषार्थवाद की, एक लिखते हैं दैववाद की, फिर दोनों का समन्वय करके लिखते हैं कि जहां तक बुद्धि पूर्वक हमसे बने वो हमारा पुरुषार्थ, और जिसमें हमारा कोई वश नहीं है वो हमारा भाग। जैसे कि हमने दाल चावल मिला करके अग्नि पर चढ़ा दिए हैं पतीली में, अब खिचड़ी बन रही है, मेरा पुरुषार्थ तो मैं जो कर सकता था, अब उसमें मैं हाथ भी डाल दूं तब भी 45 मिनट से पहले नहीं पकेगी, जितनी देर में पकनी उतनी देर में पकेगी वो। और अगर उस बीच में मुझे दूसरा कोई काम आ गया और मैं उधर चला गया तो हो सकता नीचे जल भी जाए और हो सकता बिल्ली आके पटक जाए, जरूरी नहीं है, मुझे जितनी मिलनी होगी उतनी मिलेगी, मेरा पुरुषार्थ मैंने पूरा करा है। लेकिन मेरे भाग्य में क्या है वो कौन निर्धारित करेगा, मेरे पूर्व कर्म उसको निर्धारित। इस तरह अपन समझना चाहे समझ सकते हैं। ये एक बच्चे ने पूछ लिया कि बच्चों का पढ़ाई में अपने ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते हैं, इसका समाधान बताइए। तीन चीजें हैं बेटे, हमेशा ध्यान में रखें, जिस चीज को भी करना है, पढ़ाई करनी है तो उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट तो रहता है, लेकिन कहीं और दूसरी जगह भी हमारा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए हमारा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता। हमें एक घंटे पढ़ना है अगर, तो हम एक घंटे के लिए और पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और कंटिन्यू, आज एक घंटे पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं, रोज के नियम में ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। सबसे पहले रुचि, फिर उसके बाद अभ्यास, और तीसरे नंबर पर विरक्ति। कंसंट्रेशन के लिए, हर एक काम के कंसंट्रेशन के लिए तीन चीजें तो बांध के रख लो, पूरे इंटरेस्ट से करना, कंटिन्यू करना अभ्यास करने से, और धीरे धीरे कंसंट्रेशन आता। और जितनी देर तक मुझे पढ़ना है उतनी देर टेलीविजन का त्याग, खेल कूद का त्याग, एक घंटे के लिए, क्या दिक्कत है उसमें, बैठे हैं अपन, अब करना, ध्यान आ रहा है पढ़ तो रहे हैं लेकिन ध्यान आ रहा टेलीविजन देख लेते, हाँ देखेंगे अभी, देखेंगे अभी तो एक घंटे तो होने दो पहले, फिर बाद में देखेंगे, अभी एक घंटे तो पढ़ूंगा, नहीं भी पढ़ने मन लग रहा है तब भी और कुछ नहीं करना, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ पढ़ने वालों को। नहीं मन लग रहा, बैठो अपनी किताब खोल करके पूरी पलटो, नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हाँ ठीक है पर हम उठेंगे नहीं हम यहाँ से, एक घंटे हमारा संकल्प है पढ़ने का, तो एक घंटे उठ के नहीं जाएंगे कहीं, ना टेलीविजन देखेंगे, ना कोई मैगजीन खींचेंगे, ना खेलने कूदने जाएंगे, क्यों मन ही नहीं लगा, चलो खेले, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेंगे उन क्षणों में, वरना उन सब चीजों का इम्पैक्ट भी तो हमारे ऊपर पड़ेगा, वो हमारा ज्ञान उस सब में एंगेज हो जाएगा, हमें वहां नहीं करना है, उसका इंप्रेशन हमारे ऊपर ना पड़े, इसलिए खाली बैठे भले ही पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अब रही बात कंसंट्रेशन कैसे करें, तो हर एक का अपना IQ होता है, मैं कहता हूँ अपने IQ को पहचाने, मैक्सिमम IQ होता है बस 5 मिनट में, पूरी बात छोटे बच्चों की है, इसलिए IQ अपना मैक्सिमम होता है 56 मिनट, मैक्सिमम 56 मिनट तक हम लगातार पढ़ते जाएं फीड हो जाता है अपने भीतर, बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो पूछना चाहो पूछ लेंगे, लेकिन इतना किसी का नहीं है आज, 20 मिनट है मैक्सिमम। अब इतनी ही क्षमता है कि 20 मिनट लगातार पढ़ें तो सारा याद रहता, उसके बाद तो सब ऐसा लगता है सब भूल गए और आगे कुछ समझ में नहीं आया। कैसे 20 मिनट, बहुत मुश्किल है कि 20 मिनट भी होता कि नहीं होता, तो फिर पेज पढ़ना शुरू किया, एक पेज पढ़ लिया बढ़िया समझ में आ रहा है, दूसरा पेज भी पढ़ लिया बढ़िया समझ में आ रहा, तीसरा पेज पढ़ा हाँ ठीक समझ में आ रहा सब, चौथे पेज में तो वो भी नहीं जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं आ रहा, और पुराना वाला थोड़ा याद किया है पुराना वो भी गायब, अरे सब मामला गड़बड़ हो गया। समझ लो कि आपका IQ 3 पेज का है, इन 3 पेज को कह दो A, अगले 3 पेज को B, अगले 3 पेज को C, बिफोर द क्लोजिंग B रिकॉल A, बिफोर द क्लोजिंग C रिकॉल A एंड B, इतना टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन कंसंट्रेशन ऐसे ही बढ़ेगा। जब हमने 3 पेज पढ़े और पूरे याद हैं और चौथे पेज पढ़ने में गड़बड़ आ रही है बात, तो रुक जाओ ब्रेक, अब ब्रेक करके क्या करना, रिकॉल करना, पहला वाला पेज रिकॉल किया हाँ समझ में आ रहा है, दूसरे वाले पेज पर क्या क्या लिखा था, अरे वो बीच में और वो तो ध्यान ही, अच्छा ये था, फिर उसके बाद में फिर पढ़ना, फिर मन ही मन रिकॉल कर रहे हैं, तीसरे में तो एक आध लाइन याद आ रही है, बाकी सब साफ हो गया, कोई बात नहीं एक बार फिर से देख लो, फिर से पूरा का पूरा पेज एक बार देख लिया बस ठीक है, रिकॉल हो गया। अब इसके बाद 5 मिनट और वेट करो, फिर नया 3 पेज फिर पढ़ना शुरू करो, इस तरह से आप आश्चर्य करेंगे कि अगर आपने 30 पेज पढ़े हैं तो पहला वाला पेज 10 बार आपने रिकॉल करके देख लिया है वो क्लोज। हम लोग मेमोरी क्लोजिंग तो अच्छी करके जानते हैं लेकिन रिकॉल नहीं करते। मेमोरी क्लोजिंग में कंसंट्रेशन है, अच्छे से क्लोज करो, रिकॉल करो, फिर क्लोज करो, फिर रिकॉल करो। इस तरह से बच्चों को टाइम तो ज्यादा लगेगा शुरू में, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि 3 पेज पढ़े, हो सकता है पहली बार रिकॉल करने में और 30 मिनट लग जाए 3 पेज को, लेकिन अगली बार 15 मिनट, अगली बार 10 मिनट, अगली बार 5 मिनट, फिर तो 1 मिनट में आंख बंद करी 3 पेज सामने आ गए बिल्कुल। अब कोई कहीं से पूछ लेवे सब मालूम। ये ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। अवग्रह या अवाय धारणा, धारणा की शक्ति कैसे आएगी? अवग्रह या अवाय तो होता है लेकिन धारणा नहीं हो पाती। क्षयोपशम निरंतर विशुद्धि से बढ़ता है और जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता विशुद्धि बढ़ती चली जाती। ये तो आंसर हमने थोड़ा कठिन सा दे दिया छोटे बच्चों के हिसाब से। बच्चों को क्या करना चाहिए? सामान्य रूप से 2-3 घंटे पढ़ने का नियम ले लेना चाहिए और अपनी कुर्सी टेबल से उठना नहीं चाहिए, किताब सामने रखना चाहिए, जितना मन लगे उतना पढ़ो, मन नहीं लगे तो किताब भले ही बंद करे रहो लेकिन वहां से उठना नहीं, पहली चीज ये। दूसरी ये कि एक बार में किसी को याद नहीं होता, ना हम अकलंग स्वामी है ना निकलंग स्वामी, न एक पार्टी है ना दो पार्टी, 17 बार पढ़ना पड़ेगा तब। आचार्य महाराज कहते हैं कि एक ग्रंथ 108 ग्रंथ एक एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक ग्रंथ 108 बार पढ़ो। तो दूसरा मेरा सलाह ये है कि बार बार उसका अभ्यास करो। याद नहीं होता, याद नहीं होता ऐसा रोना लेके मत बैठो, एक बार में किसको याद होता बाबा, किसी को नहीं होता। फिर से पढ़ो, फिर से, क्यों कैसे नहीं होगा याद, मेरा क्षयोपशम बढ़ेगा, मैं अभ्यास करूंगा तो क्षयोपशम रोज करूंगा। जो चीज कठिन है उसका तो बार बार अभ्यास करूंगा दिन में 17 बार। और फिर या तो ऐसा करो कि जो चीज याद नहीं होती, मान लो एक पेज में ये याद नहीं हो रहा तो उसके 4 पैराग्राफ बना लो छोटे छोटे, पूरा लेंथी मत। इसलिए अपने नोट्स बनाना भी जरूरी, अब तो सारा काम बने बनाए उधार खाते से होता है, उसमें अपने हाथ से लिख करके बनाओ। एक बार लिखना पड़ेगा, एक बार खुद पढ़ोगे, एक बार उससे किताब से कंसीडर करोगे, कितना मेहनत तो पहले ही हो गई, और फिर उसके बाद एक एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को जोर से पढ़ो। जो याद नहीं हो रहा तो सुनने भी अभी आएगा, फिर भी याद नहीं होता तो उसके सामने कोई सिंबल बनाओ, ये सिंबॉलिक कंसंट्रेशन कहलाता। आपने स्टार बना दिया, ये पूरा पैराग्राफ स्टार का जैसे ही ध्यान आएगा पूरा पैराग्राफ सामने आ जाएगा। फिर भी याद नहीं होता तो कहता हूँ कि उसको उतने पैराग्राफ को एक कागज पर लिख करके सामने टेबल पर रख लो, रोज दिन भर में एक बार उसको देखना भर है क्या लिखा हुआ, या कि दीवार पर चस्पा कर लो, दरवाजे पर लगा लो। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे साहब बताया करते थे हम लोगों को, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सामान्य सी चीज है। जैन धर्म के अनुसार तो सिर्फ इतना ही है कि हमारा ज्ञान हमारी विशुद्धि से, हमारे अभ्यास से बढ़ता है, बाकी सब चीजें उसके आसपास की अपन ने जोड़ ली। आप निरंतर उसको देखेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि जब आप एग्जाम देने, मैंने ये प्रयोग किया है, मेरे से एसिटिलीन का फॉर्मूला याद नहीं होता था, CH3CH और फिर क्लोरोफॉर्म का और ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब यही प्रक्रिया आजमाई कि बस उस फॉर्मूला को लिख लिया, चस्पा कर लिया, रोज आते थे दरवाजा खोलने से पहले पढ़ा और बैठ गया अपना स्टडी करने, बाकी कोई कंसंट्रेशन नहीं उस पर, वो है। और जब जैसे ही आया तो फौरन दरवाजे पर लगा हुआ स्लिप याद आ गई और ज्यों का त्यों लिख दिया। बाहर आके किसी ने कहा क्या लिखा, लिख दिया वो जो वहां लिखा था यहाँ लिखा था। कुछ नहीं किया मैंने, कोई प्रयत्न किया, इतना भीतर अपने अंदर दृश्य काव्य कहलाता है, ये एक श्रव्य काव्य होता है जिसको हम सुन करके, टेलीविजन इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि दिखता भी है और बोलना दोनों चीजें एक साथ अटैक हो रहा है, दृश्य काव्य भी और श्रव्य काव्य भी। और अगर हम इस तरह से देखने का अपना स्टडी के समय और ये बना लें कि हम सिर्फ उसको देखेंगे, पढ़ना भी नहीं, सिर्फ देखते रहिए उसको 5 मिनट और बस आपके अंदर इम्प्रेशन बन जाएगा, शोभ सम आपका जागृत हो जाएगा। ऐसे और भी ढंग हैं भैया, इस तरह से बच्चों को अपना कंसंट्रेशन करना चाहिए। और जो लोग ध्यान करते हैं उनको इस तरह से मंत्र इत्यादि का ऐसे ही अभ्यास करना चाहिए, दोनों ही चीजें हर एक काम में। मुझे आश्चर्य होता है कि खाना बनाते समय किसी का हाथ नहीं जलता, कितना कंसंट्रेशन, नहीं रुपए गिनते समय कितना कंसंट्रेशन, 5 वाला रुपए 100 वाले में नहीं जाता कभी, वो 5 में ही रहेंगे। अरे कभी भी खाना खाते समय ऐसा नहीं खाते, कभी ऐसे ही खाते हैं, कितना कंसंट्रेशन इन सब चीजों में, तो कितनी जल्दी, क्योंकि अभ्यास है ना भैया, इंटरेस्ट है, अभ्यास है, वही इंटरेस्ट और वही अभ्यास अगर जो है इन चीज में हो जाए भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। बच्चों को जो है और डिकरेज नहीं करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ये फादर मदर को कह रहा हूँ। अगर वे बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं तो कभी भी ये नहीं कहें उनके मुंह पर या 4 लोगों के बीच में कि ये तो पढ़ते ही नहीं है, इसको तो खेलने से फुर्सत नहीं है, ऐसा ना कहें प्लीज। साइकोलॉजिकली उसके भीतर संक्लेश होता है, छोटा सा भी है मान लीजिएगा फिर भी वो कहेगा नहीं, लेकिन उसके भीतर संक्लेश होता, और जैसे ही संक्लेश होता है ज्ञान ढकना शुरू होता है, उसके भीतर भय पैदा कर देते हैं अपन, उस भय से भी उसका ज्ञान ढकता है। उसको तो हमेशा एनकरेज करना चाहिए, बहुत होशियार है, पढ़ेगा उसको याद होगा, जाओ मंदिर में जा करके पुस्तक रख करके आओ, शास्त्र भेंट करके आओ, किसी को चाहिए हो उसको शास्त्र ले करके दो, तुम नहीं पढ़ते हो दूसरे को किताब दो, दान देने से ज्ञान बढ़ता, ज्ञान दान देंगे अपना ज्ञान बढ़ेगा। इस तरह से ये सारी चीजें आगम में लिखी हुई हैं, इनका आलंबन लें तो हो सकता है छोटे बच्चों ने हिम्मत करके उसने प्रश्न तो पूछ दिया।
मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। सत्य व्यवहार करूं रहे भावना
विद्यासागर मुनि महाराज।